Şimdi. Paşattı kavi. Percy Bysshe Shelley. Ne? Ek kavita likhi hai. I met a traveler from an antique land, who said, two vast and trunkless legs of a stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor, well, whose passion red, yet which survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and heart that fed, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. Atyant प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि कहता है, मरुस्थल में दो विशाल पत्थर के पैर खड़े हैं, एक मूर्ति है जिस मूर्ति में रेत है और रेत पर दो पत्थर है, जैसे कि वो पैर है। टूटा फूटा चेहरा पड़ा है जिसके चेहरे पर घृणा, तिरस्कार और ठंडी सत्ता का भाव झलकता है। यह देखकर समझ आता है कि मूर्तिकार ने उस राजा के भावों को इतनी सटीकता से पत्थर पर उतारा था, वे भाव आज भी उस निर्जीव मूर्ति में जीवित है। वह हाथ जिसने उन भावों की नकल की, वही हृदय जिसने उन्हें जन्म दिया, और उस मूर्ति के आधार पर यह शब्द खुदे हैं। मेरा नाम है ओज़िमेंडियास, राजाओं का राजा। मेरे कार्यों को देख ये महान लोगों और निराश हो जाओ। और अब वहाँ और कुछ नहीं बचा। उस विशाल खंडहर के चारों ओर केवल अनंत सूनी और समतल रेत फैली है। एक चित्र है जिसमें दो पैर है और एक चेहरा है, और इस मूर्ति पर ये कविता लिखी गई है। लेखक कहता है कि मूर्तिकार ने उस राजा के भावों को कितना सटीकता से दर्शाया है, पर आज वहां है क्या? वो राजा कह रहा है, देख मेरे चेहरे को, देख देख मैं कितना महान हूं। वो राजा अहंकारी है, परंतु आज इतने वर्षों के बाद क्या बचा है? उसकी केवल एक मूर्ति बची है जिसका एक पैर टूटा हुआ है और एक पैर जमीन में गड़ा हुआ है, उसका चेहरा टूटा हुआ पड़ा है। और यही नियति है, चाहे कितना भी अहंकारी हो, कितना भी बड़ा राजा हो और कितना भी बड़ा तानाशाह, आखिरकार नियति क्या है? द लोन एंड द लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। कवि कहता है उस विशाल खंडहर के चारों ओर केवल अनंत अनंत सूनी और समतल रेत फैली। ये कैसी विडंबना है? कहाँ है वो सत्ता, वो वैभव, वो अभिमान? समय के सामने सारे साम्राज्य कहाँ खो गए? सब कुछ नष्ट हो गया। ओज़िमेंडियास नाम का शायद कोई राजा होगा जिस पर शेली ने यह कविता लिखी। मनुष्य तीन तलों पर जीता है, एक विचार का तल, दूसरा भावनाओं का तल, तीसरा चेतना का तल। हम किस तल पर जी रहे हैं? विचार करता है कि मुझे करना क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन किस ओर जा रहा है, और कई बार सारा जीवन सोचते सोचते निकल जाता है। दूसरा तल है भाव का तल, इमोशंस। उसे दर्द होता है जब कोई निंदा करता है और अपमान करता है और विरोध करता है। उसे पीड़ा पहुंचती है जब कोई ग्लानी करता है और धोखा देता है और आक्षेप करता है, झूठे इल्जाम लगाता है। वो एक इमोशनल बीइंग है, इमोशंस ड्राइव करते हैं। एक विचार का तल, एक भाव का तल, चेतना का तल, यहाँ तक बहुत कम पहुँच पाते हैं। सारा जीवन प्यार करने में और भावनाओं में चला जाता है। चेतना का तल अर्थात जीवन के गहरे प्रश्न, मैं कौन, मैं क्या, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, जो कुछ अब तक पाया उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या सार्थकता है। इस ओज़िमेंडियास की तरह कितना गर्व है उसे। वो कहता है, मेरे कार्यों को देख, My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. और दुखी हो जाओ, देखो मुझको, मैं कितना महान हूँ और तुम कितने नीचे हो. और मैंने कुछ कुछ पाया है और तुमने कुछ भी नहीं पाया. तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो चुका है. और मेरी संपत्ति को देख. पर आज रहा क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं. आज यह व्यक्तवाणी बहुत छोटी है. 31st, 30th November 2012. ये मुरली कब चली है? 2012. पहले मुरली पढ़ लेंगे, छोटी सी है. आज मुरली की शुरुआत कहाँ से है? आज से. आज आज क्या करना है? आज बच्चों के याद और प्यार ने बाप दादा को इस साकार दुनिया में अपनी आकर्षण से बुला लिया. बाप दादा भी बच्चों को साकारी दुनिया में आकार रूप में देख रहे हैं. साकार रूप में, साकार रूप में देख रहे हैं. चेतना के तल पर चल रहा है. चारों ओर के बच्चे भी बाप को देख रहे हैं और बाप भी साकार रूप में देख रहे हैं. और दिल में चारों ओर के बच्चों प्रति, वाह बच्चे, कल्प कल्प के पात्र बच्चों को देख खुश हो रहे हैं. हर एक बच्चे के भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन मना रहे. भाग्य. तो आज की मुरली से सबसे पहला होमवर्क है भाग्य. भाग्य की तुलना किस किस से की गई? ऐसी कितनी पॉइंट्स लिखनी है? 21. भाग्य का तिलक, भाग्य का सितारा, भाग्य की कलम, भाग्य की रेखा, भाग्य की चमक, भाग्य का द्वार, भाग्य की चाबी, भाग्य की भाग्यश्री, भाग्य लक्ष्मी, भाग्य का खजाना, भाग्य का भंडार, भाग्य की खान और भाग्य की लकीर, भाग्य की प्राप्ति और वर्षा और भाग्य का सूर्य और. तो होमवर्क में ये छोड़कर लिखना है. कितने पॉइंट्स लिखने हैं? द मेटाफर ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य के भाग्य की तस्वीर भी होती है ना. अच्छा, तो हर एक बच्चे के भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन मना रहे. जब भी मुरली पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न अपने आप से करना, इस समय हम क्या कर रहे थे? कौन सी तारीख को? 30 नवंबर 2012 में क्या कर रहे थे? भगवान धरा पर आया था, हजारों लोगों से मिल रहा था, उस समय हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मनी भाई? क्या कर रहे थे? डायमंड हॉल में मिलन. हर एक बच्चे के भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन मना रहे थे. ये कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं इतने हजारों वर्षों के बाद भगवान धरा पर आता है और हम उससे मिलते हैं. एक तरफ वो संसार है और जहाँ संसार के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं. कहाँ भाग रहे हैं? संसार के पीछे, पैसों के पीछे, धन के पीछे, वैभव के पीछे, पदवी के पीछे, पद के पीछे, प्रशंसा के पीछे और सत्ता के पीछे, सत्ता की लालच, झूठी परछाई के पीछे और भगवान धरा पर आया उस साधारण रूप में आए हुए भगवान को पहचानना, ये इतना बड़ा भाग्य है। तो बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चे के भाग्य और प्राप्ति को देख मिलन मना रहे, दिल दिल में बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे, हर एक बच्चे के चेहरे में चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। चेहरे पर क्या दिख रहा है? चमकता भाग्य। मस्तक में क्या दिखाई दे रहा है? लाइट की प्राप्ति चमक रही है। हाथों में ज्ञान का भंडार दिखाई दे रहा है। इस संसार में ज्ञान जैसी पवित्र करने वाली कोई और वस्तु नहीं है। दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है, पांव में कदम में पदम दिखाई दे रहे, ऐसा भाग्य देख हरेक का चेहरा चमक से चमक रहा है। चेहरा चमक से चमक रहा है, एलिट्रेशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में, फिगर ऑफ स्पीच। हम निरंतर ये भूले रहते हैं कि हमें हमने क्या पाया है। जीवन का लक्ष्य क्या है? सर्वोच्च प्राप्ति कौन सी है? निरंतर अपने भाग्य की स्मृति। तो अपनी डायरी निकालेंगे और उस पर एक मेडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेडल। उसमें लिखेंगे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अपने हाथों को निरंतर क्या करना है? ट्रेनिंग देनी है। किसकी? लिखने की। और लिखना कैसा है? सुलेख। एक एक अक्षर कैसा हो? मोतियों की जैसा चमकदार। आप जैसा लिखते हो, एक एक शब्द क्या दर्शाता है? स्थिति को दर्शाता है। व्यक्ति एक एक अक्षर कैसा लिख रहा है, केवल उसके हस्ताक्षर देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। क्या लिखेंगे? मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। इन हाथों को लिखने की ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि इन हाथों ने क्या किया है? बड़े पाप किए, बड़े विकर्म किए। जिनके पास कागज और पेन नहीं है, मनी भाई, उनको दे दो। रोज एक पेज लिखना है, पर कैसे? धीरे धीरे, प्यार से। शिरोरेखा परफेक्ट हो, एक एक अक्षर सुलेख हो। राइटिंग इज मेडिटेशन। लिखना क्या है? मेडिटेशन है। कल हमने ज्ञान के साथ करने वाली 8 बातें देखी थी। रुको, पूछने दो, माइक दे दो। डॉक्टर रम्या, ज्ञान के साथ क्या करना है? 8 चीजें करनी है। ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है। किस लिए है? क्या करना है ज्ञान का? रुको, उनको बुरा लगेगा। ज्ञान के साथ 8 चीजें करनी है, कौन कौन सी? जल्दी बताओ, वैसे बताओ। पढ़ना, तो ज्ञान को क्या करना है? रोज रोज पढ़ना है, रोज रोज नई नई चीजें पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बुद्धि को क्या लग जाता है? जंक लग जाता है, व्यक्ति डल हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए नित नई बातें पढ़नी है। दूसरा, सुनना है, श्रवणम। श्रवण क्या है? श्रवण भक्ति कहा गया है। मनन, चिंतन, श्रवण मनन निनिध्यासन शास्त्रों में तीन बातें लिखी है, सुनना, पढ़ना और धारण करना, तीसरा
लिखना। लिखना
लिखना, तो ज्ञान को क्या करना है, लिखना है रोज। कितना पेज लिखेंगे? बस पहले एक पेज, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे, धीरे 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 धीरे, और अच्छे अक्षरों में लिखना है। अगला
बोलना।
बोलना क्या करना है, बोल, जितना ज्ञान मुख से निकलेगा उसके संस्कार, न्यूरल पाथवेज, न्यूरल ट्रैक क्रिएट होंगे। और मनन करना, उसका सोचना, उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में ये क्या कहा है, ये क्यों कहा है। ज्ञान को, ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है, इसे स्वीकार नहीं करना है। जो जीवन की यात्रा निश्चय से चालू करता है, हो सकता है वो यात्रा डाउट में खत्म हो। इसलिए यात्रा की शुरुआत किससे हो, डाउट से, संशय से या फिर संदेह से, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों माना जाए। अगर संदेह से चालू किया तो हो सकता है जीवन का अंत निश्चय से होगा, क्योंकि आधार किस पर रखा है हमने, एनालिसिस। हर चीज का क्या करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम करें, ऐसा नहीं। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन सेड बाय समबडी, इसलिए नहीं स्वीकार करो कि किसी ने कहा है, इसलिए नहीं स्वीकार करो क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, इसलिए नहीं स्वीकार करो किसी किताब में लिखा है, इसलिए नहीं स्वीकार करो क्योंकि परंपरा से चला आ रहा है। ये क्यों करते हो, परंपरा से। हजारों लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं। बाबा ने कहा है जज करो, सोचो, चिंतन करो, मैं जो कहता हूं वो राइट है या संसार के लोग जो कहते हैं वो राइट है। जो अपनी जर्नी संदेह से चालू करता है, यहाँ लोग आते हैं और बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर कर चले जाते हैं। इसके पहले भी सुनाया था, एक व्यक्ति था, एक गुरु था, और एक दूसरा जो बड़ा गुरु था वो उससे बहुत घृणा करता था। ये साधारण सा व्यक्ति था। उसने एक बार एक किताब लिखी और अपने शिष्य से कहा कि जाओ उस धर्म गुरु के पास और उनको एक किताब, ये किताब जो मैंने लिखी है, उनको दे के आओ। उसने कहा उसके पास, वो तो आपसे नफरत करता है, घृणा करता है। गुरु कहते फिर भी जाओ। वो लेके जाता है उस धर्म गुरु के पास। धर्म गुरु अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और वो शिष्य जैसे उस दूसरे धर्म गुरु के पास जाता है और उसे वो किताब देता है कि हमारे गुरु ने ये किताब लिखी है। वो उसका नाम देखते ही किताब को लेके फेंक देता है। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतनी घृणा और इतनी नफरत है हृदय में कि वो देखने को भी तैयार नहीं है, नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। उसकी पत्नी कहती है उस धर्मगुरु की, इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है किताब रख लो, किसने बोला है पढ़ने के लिए, पड़ी रहेगी अलमारी में, इतनी किताबें तो पढ़ी है, एक और सही, इतनी किताबें तो पढ़ी रहती है, तुमको क्या है। वो कुछ कहता नहीं, वो शिष्य वहीं खड़ा रहता है और चुपचाप आ जाता है। गुरु पूछता है शिष्य से क्या हुआ उस किताब का, वो कहता है वो गुरु तो बहुत भड़के, वो तो देखने को भी तैयार नहीं थे, किताब को उन्होंने फेंक दी। पर उनकी पत्नी, वो बहुत धार्मिक थी, उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, उस पत्नी ने कहा कि इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है, किताब ले लिया होती, रख दी होती। ये गुरु कहता है उसकी पत्नी उस किताब को कभी नहीं समझेगी। हो सकता है जिसके हृदय में घृणा है वो एक दिन उस किताब को उठा ले और पढ़े, पर ये जो पत्नी टाइप वाले कैरेक्टर है जो कहते हैं किताब को ले लो, क्या फर्क पड़ता है, रहेगी पढ़ी, उनके जीवन में कभी भी क्रांति नहीं आ सकती। उनके जीवन में क्रांति नहीं आ सकती। वो देखते ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा, अच्छा काम कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा अच्छा करते हैं, वो कभी भी वो रूपांतरित नहीं होंगे। हाँ, जिसके हृदय में घृणा है, शायद वो घृणा एक दिन प्रेम में रूपांतरित हो जाएगी। और वैसा ही होता है, थोड़ी देर के बाद वह गुरु शिष्य तो चला जाता है, सोचता है पढ़ तो लूं आखिर है क्या उसमें इतना, तो वो किताब को उठाता है। आगे क्या हुआ पता नहीं, कहानी पूरी हुई। तो यात्रा की शुरुआत कहां से हो? संदेह से, संशय। संदेह और संशय दो शब्दों में भी अंतर है, एक है संदेह एक है संशय। संशय निगेटिव है, संदेह अर्थात आश्चर्य। एक शब्द है वो हिंदी में कम मराठी में ज्यादा प्रयोग होता है, कौतुक। कौतुक ये अद्भुत शब्द है, उसमें हिंदी में कौतूहल, उसमें एक उत्कंठा भी समाई हुई है, जिज्ञासा समाई हुई है और आश्चर्य भी समाया हुआ है। दो भाव एक साथ मिश्रित हो रहे हैं, ये है क्या? लेट मी थिंक, लेट मी एनालाइज, लेट मी नो, जिज्ञासा हो। जब तक हृदय में जिज्ञासा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिज्ञासा ही मर चुकी है। जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया है? ठंडी हो गई। जो कर रहा है करने दो। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं उनकी शुरुआत कितना आश्चर्य है कि अब ब्रह्म क्या है यह जानने की कोशिश करते। किसी किताब की शुरुआत अब से होती है क्या? अब अर्थात इसके पहले भी कुछ कहा गया है। अतः तो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति क्या है अब जानने की कोशिश करो। मतलब इससे पहले भी कुछ तुमने कहा है, कुछ कहा नहीं है, किताब की शुरुआत अब से है। अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज। तो जीवन में क्या हो? एक जिज्ञासा। जीवन में क्या हो? कौतूहल। जीवन में क्या हो? उत्कंठा, क्यूरियोसिटी, प्यास हो, पिपासा हो, जानने की ललक, क्या है ये, मुझे समझना है ये कौन लोग है, ये क्यों यहां है, ये क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है, ये प्यास। और दूसरा क्रिटिकल एनालिसिस, थिंकिंग, सोचना, करना क्या है और कब करना है ये कार्य? सुबह सुबह। सुबह सुबह केवल बैठकर योग नहीं लगाते रहना है, क्या करना है? सोचना है। इसको अंग्रेजी में, साइकोलॉजी में कहते हैं फर्स्ट आवर रूल। जीवन की जो समस्या है, जीवन की जो दुविधा है, जीवन की में जो गड़बड़ चल रही है, उसके विषय में यदि कुछ करना है तो कब करो? सुबह सुबह उठ के, द फर्स्ट आवर, उठने के बाद पहला घंटा, उस घंटे में क्या करना है, क्योंकि तब मन शांत होता है। संसार के लोग सोए हैं, तो अपने भाग्य के विषय में कब चिंतन करेंगे? सुबह सुबह। हाँ, पॉइंट्स चालू थे। ज्ञान का क्या क्या करना है? ज्ञान का, ज्ञान की चर्चा करनी है। और क्या करना है? ज्ञान का
समझना है,
ज्ञान को समझना है ये है क्या, और धारण करना है। कितनी बातें हो गई? 8। ज्ञान के साथ क्या क्या करना है? सबसे पहला ज्ञान को सुनना है, ज्ञान को पढ़ना है, ज्ञान को लिखना है, ज्ञान की चर्चा करनी है, ज्ञान को बोलना है, ज्ञान को समझना है, ज्ञान पर मनन करना है, और समझना है उसे धारण करना है। धारण करने की आवश्यकता नहीं, अगर कोई चीज समझ में आ गई तो वो धारण अपने आप हो जाती। धारण करना अर्थात उसे अपनी आदत बना देना, और आदत के लिए कितना समय लगता है कुणाल भाई? 21 दिन लगते हैं या 90 दिन लगते हैं? सुबह उठने की किसी को आदत डालनी है कितना टाइम लगेगा? किसी को एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है कितना टाइम लगता है? किसी को रनिंग की आदत डालनी है कितना टाइम लगता है? आशीष भाई, कितना टाइम लगता है एक आदत का निर्माण होने के लिए? सेकंड भी लग सकता है और
लंबा समय भी लग सकता है।
लंबा समय भी लग सकता है और हो सकता है कभी बने ही ना। ये भी हो सकता है केवल संकल्प ही रह जाए कि हमें ऐसा करना है, पर कभी होता नहीं है। देखा जाए तो डिपेंड करता है किस अवस्थ रियलाइजेशन क्या है, यहां अगर शॉक है इलेक्ट्रिक में और हमने हाथ लगा दिया, करंट लग गया जोर से, फिर से हाथ न लगाने की आदत कितने टाइम लगा बनने के लिए? 1 सेकेंड। इसलिए क्या चाहिए? शॉक चाहिए। जीवन में क्या चाहिए?
झटका।
जब तक धक्का नहीं लगता तब तक आदमी बदलता नहीं। लोग बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू जब तक नहीं छोड़ते, जब तक एकदम हार्ट अटैक आके आईसीयू में नहीं चले जाते, और इधर प्रिक इधर प्रिक, इधर लाइन उधर लाइन, वैसा शॉक लगता है ना तब। तो आदत के लिए क्या चाहिए? शॉक चाहिए। शॉक, अगर शॉक लगे ना तो जीवन में विचार चिंतन, इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। हर चीज का क्या करना है? समीक्षा, समीक्षा हो। ये क्या है, ये करना है तो क्यों करना है? जबरदस्ती करना है? जबरदस्ती। तो लोग जबरदस्ती भर्ती हो जाते हैं इधर, उनका क्या होता है? You can take the horse to the pond, but you cannot make it drink the water. घोड़े को जबरदस्ती तालाब के पास लेके जा सकते हैं, पर उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। नहलाया जा सकता है और पानी नहीं पिला सकते उसको। कितने लोग आ जाते हैं इधर जबरदस्ती। चारों ओर के बच्चे संतुष्ट स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है? संतुष्टता। जो पाना था सो पा लिया। जीवन मनुष्य निरंतर बेचैन रहता है, उसे और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। एक व्यक्ति, शास्त्रों में एक कहानी है कि एक व्यक्ति शिव की भक्ति करता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, उसे तो पता ही नहीं रहता कि ऐसा होता भी है करके, भगवान आते भी है प्रसन्न होते हैं। लोग भक्ति तो करते पर विश्वास थोड़ी होता है। तो हो गया एक दिन अचानक भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बताओ क्या करना है। ही वॉज अनप्रिपेयर्ड। एकदम धक्के से भगवान प्रसन्न हो गए। अब करना क्या है? एकदम जो पहला प्रश्न आया वो कि मैं सबसे ज्यादा दुखी अपनी पत्नी से हूं। भगवान ने कहा, 3 वरदान मांगने हैं। उसे समझ नहीं आया करूं क्या। उसने कहा, ये पत्नी मुझे बहुत दुख देती है, इसका कुछ करो, इसको मार ही दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। वो घर आया, पत्नी मरी थी। फिर उसे लगा, ये मैंने क्या कर दिया, इसका मुझसे कितना प्रेम था और मेरा भी कितना प्रेम था। ये झगड़े तो छोटे छोटे थे, प्रेम तो ज्यादा था। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। आंसू बहाने लगा। फिर भगवान के पास टू ऑप्शन, मेरा 2nd वरदान, उसको वापस जिंदा करो। वो बहुत अच्छी थी, फिर वो जिंदा हो गई। भगवान ने कहा, 3rd वरदान। वो सोचने लगा, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, जो भी मांगूंगा उसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो वो भगवान से कहता है, आप ही बताओ आपसे क्या वरदान मांगू। भगवान कहते हैं, सबसे अच्छा वरदान ये मांगो कि मुझे कोई भी सांसारिक इच्छा ना हो। वरदान कौन सा? इच्छा मात्रम अविद्या का वरदान मांगो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो कुछ तुमने दिया है उससे मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। तो भगवान अगर कहे तुमको क्या चाहिए, तो सुखदेव भाई क्या मांगोगे?
कुछ भी नहीं।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ तुमने दिया है उससे मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। संतुष्टम सततम योगी है अर्जुन। योगी कौन है? जो निरंतर तृप्त है। तृप्त है अर्थात इसका ये नहीं अर्थ कि हम निष्क्रिय हो गए, अर्थात हमने प्रयत्न करना बंद कर दिया है। जीवन में तृप्ति है अर्थात मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझे सब दे दिया है। ऐसे चेहरे चमकते हुए देख अन्य आत्माएं भी सोचती है इन्हें क्या मिला है, तो आप क्या जवाब देंगे? जो पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह निरंतर एक भाव, क्योंकि संतुष्टता स्वभाव है और अतृप्ति क्या है वो भी स्वभाव है। सब कुछ मिलने के बाद में भी व्यक्ति दुखी रहता है। मैक्सिको में दो झरने थे, दो झरने, एक गांव में दो झरने एक साथ, एक ही गांव में, एक में गर्म पानी आता था, एक में ठंडा पानी आता था। वहां की महिलाओं को कितना अच्छा है कपड़े धोने के लिए, पहले गर्म में धो फिर ठंडे में धो। एक ही जगह पर दो झरने। एक अमेरिकन पत्रकार गया इंटरव्यू लेने के लिए गांव की महिलाओं का, ये आपको क्या लगता है भगवान ने ये कैसी प्राकृतिक चमत्कार है, एक ही गांव में एक ही जगह पर दो झरने बह रहे, एक में गर्म पानी आता है एक में ठंडा, कितना भाग्य है। वो माता जिसका इंटरव्यू लेते हैं वो कहती है वो तो सब तो ठीक है, साबुन कहाँ पे आता है? उसको साबुन का भी झरना चाहिए। दुख जस का तस, सब कुछ मिल गया उसके बाद में भी दुखी है, तो दुख स्वभाव है, दुखी होना स्वभाव है, अतृप्त रहना स्वभाव है व्यक्ति का। इसका व्यक्तियों से वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ मिलने के बाद में भी दोष दृष्टि रहेगी, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है? संतुष्ट, संतुष्टता, संतुष्ट मणियों का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। एक अंग्रेजी लेखक अलेक्जेंडर पोप ने, जब वो 12 साल का था, इसके पहले भी कभी सुनाई थी, 12 साल का एक बच्चा लिखता है और ये कविता एमए इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ी जाती है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रीद हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। वो मनुष्य कितना सुखी है जिसकी इच्छा जिसकी चिंता है अपने थोड़े से पैतृक खेती तक सीमित है, जो अपनी ही धरती पर अपनी ही हवा में सांस लेकर संतुष्ट है। उसे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी जमीन है, हवा है और उसमें वो खुश है। लोगों को महलों माड़ियों में भी नींद कहाँ आती है, सब कुछ है पर आधा अमेरिका नींद की गोली लेकर सोता है। इस संसार में सबसे समृद्ध देश कौन सा है? अमेरिका। परंतु लोगों को नींद नहीं आती, क्या चाहिए? नींद की गोलियां चाहिए। उसके बाद में भी नींद नहीं आती, डायरेक्ट पेशेंट्स कहते हैं वी आर इन डिप्रेशन, मेरी जो नींद की गोली है उसको थोड़ा डोज बढ़ा दो। अगर हम नहीं बढ़ाते तो कुछ कुछ पेशेंट क्या करते हैं आशीष भाई, 1 mg को हाथ से ही अपने कर देते हैं, ऐसा
2 mg बना देते हैं,
2 mg बना देते हैं। डॉक्टर ने लिखा है 1 mg, अपने हाथ से उसको 2 बना देते। ये है चमत्कार। उसके पशु उसे दूध देते हैं, खेत उसे अन्न देता है, भेड़ उसे वस्त्र देती है, और जिसके पेड़ गर्मियों में छाया और सर्दियों में आग देते। धन्य है वह जो बिना चिंता के देख सके कि घंटे दिन और वर्ष धीरे धीरे बहते जा रहे, शरीर स्वस्थ है मन शांत है और दिन शांतपूर्ण, रात की गहरी नींद है, पढ़ाई और विश्राम का संतुलन है, सरल आनंद वह निर्दोषिता जो ध्यान के साथ मन को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। Does let me live, कभी कहता है मुझे ऐसे जीने दो, अनसीन अननोन, लोग मुझे न जाने लोग मुझे न पहचाने, ये प्रसिद्धि मुझे नहीं चाहिए, ये लाइमलाइट मुझे नहीं चाहिए। एंड दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई एंड स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन नो वेयर आई लाई, और चुपचाप इस संसार से निकल जाऊं और एक पत्थर को भी ना पता चले मैं कहां चला गया। सबसे ज्यादा दुखी कौन सी इच्छा करती है? प्रसिद्ध होने की इच्छा. द डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है कि दुनिया मुझे जान जाए, यही इच्छा व्यक्ति को बेचैन करती है, पागल करती है, दुखी करती है. आधी मृत्यु बेचैन 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 रहता है, 24 घंटे बेचैनी रहती है. आई स्लीप नॉट द थॉर्न इन माई कोच. जैसे बेड पर एक काटे है, एक मिनट नहीं सो पाता है ढंग से, निरंतर बेचैनी निरंतर बेचैनी. एकांत में जाओ और सोचो मुझे करना क्या है, ये जीवन किस लिए है. तो क्या कह रहे हैं बाबा? संतुष्टता का प्रकाश फैलता है अपने आप. अगर कोई पूछे तो क्या कहो उससे? पाना था सो पा लिया, सब संतुष्ट मणियों के रूप में चमक रहे, ऐसी अपनी मूर्त को आप भी देख रहे हो ना बाप दादा भी. ऐसी संतुष्ट मणि आत्माओं को देख क्या गीत गाते हैं? वाह मेरे संतुष्ट आत्माएं, वाह. यहां पर मुरली पूरी हो रही है. मुरली के कुछ प्रश्न हैं. आज बाप दादा किस आकर्षण से साकारी दुनिया में आए हैं? बच्चों के याद और प्यार की आकर्षण. बाप दादा हर बच्चे के चेहरे पर क्या देख रहे हैं? चमकता हुआ भाग्य और संतुष्टता. मस्तक में कौन सी प्राप्ति चमकती हुई दिखाई दे रही है? लाइट. हाथों में क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञान. सबसे बड़ी साधना जो है वो ज्ञान की साधना है. सब कुछ छोड़कर क्या करना चाहिए? केवल पहले ज्ञान के पीछे, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है. प्रकाश. हमको याद है एक बार हम बहुत, मौसम बहुत अच्छा था, ज्ञान सरोवर जा रहे थे बाइक से, और जाते जाते अचानक बारिश, इतनी बारिश इतनी बारिश, इतना एकदम मौसम बदल गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम फागी धुंध, अंधेरा छा गया, और तेज हवा तेज बारिश. तो रुकना पड़ा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, रास्ता कहाँ चला गया कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना अंधेरा इतना अंधेरा इतना अंधेरा. और 5 या 6 बज रहे थे, पर जैसे लग रहा था रात हो गई. और उस बीच अचानक बिजलियाँ कड़कने लगी, इतनी तेज बारिश चालू हो गई, पूरा भीग गया. फिर हम रुक गए और एक बात याद आई जो शास्त्रों में लिखी है, तमसोमा ज्योतिर्गमय. हम सोच रहे हैं, वहीं खड़े खड़े सोच रहे थे कि शास्त्रों में ये बात किस लिए लिखी गई है? क्या ये बाहर के अंधेरे के लिए लिखी गई है? उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़े रहकर किससे कह रहा है ये? क्या ये इस अंधेरे के लिए कह रहा है कि अंधेरा है अभी प्रकाश हो जाओ? प्रकृति तो अनित्य है, आज अंधेरा थोड़ी देर में प्रकाश. ये किस अंधेरे के लिए कह रहा है? भीतर जो घना अंधेरा छाया हुआ है, कौन सा? दुख का अंधेरा, भय का अंधेरा, चिंता का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा, अविद्या का अंधेरा. उस अंधेरे से मुझे किस ओर ले चल? प्रकाश की तरफ ले चल. तो सबसे बड़ी साधना कौन सी है? ज्ञान की साधना. इसलिए ज्ञान यज्ञ लगाना है जीवन में, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सेवा यज्ञ, और चौथा योग. पहला ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 प्रकार के यज्ञ है. ये है क्या? What is it? गीता में लिखा है मेरे 4 प्रकार के भक्त है. एक वो जो रोज आता है, पर क्या मांगता है? संसार के लोग वस्तुएं मांगता है, धन दे दो, पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, संसार की प्राप्ति है, पद दे दो, पोस्ट दे दो, इंटरव्यू में पास करा दो, थोड़ी जमीन और दे दो, थोड़े सब्सक्राइबर दे दो, थोड़े लाइक्स दे दो. इतने कम सब्सक्राइबर, इतने कम लाइक्स, उसके भिखारी है हम इतने महान, और लोगों को कब पता चलेगा? एक वो, पर आते तो भगवान कहते मेरे ही पास. दूसरे वो केवल संकट के समय आते, आरती अर्थार्थी, केवल जब संकट हो, हे प्रभु तुम्हारे सिवा मेरा कोई कोई था ही नहीं कभी, और जब संकट दूर हो गया तब टाटा बाय बाय। जीवन में जब परिस्थितियां आती है तब बेचैन होके भगवान के पास आते, बाकी नहीं आते, बाकी संसार में डूबे रहते। तीसरे वो जो जिज्ञासु है, जिनके हृदय में जिज्ञास है, व्हाट इज इट, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज गॉड, ये है क्या, तुम कौन लोग हो, ये कपड़े क्यों पहनते हो सफेद, और चौथे जो सच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए लव फॉर लव सेक, जो केवल मुझसे प्यार करते हैं। मत परायण, जो मुझ पर निर्भर है वो। तो अपने आप से पूछना है, हम कौन है इन चारों में से। कैटेगरी के बाहर, मस्तक में कौन सी प्राप्ति, हाथों में क्या दिखाई दे रहा है, ज्ञान। अगला, दिल में कौन विराजमान दिखाई दे रहा है, तो एक दिल का चित्र बनाएंगे, एक हार्ट का शेप बनाना है। क्या करना है, हार्ट का शेप, और उसमें लिखेंगे कि भगवान का वो कौन सा गुण है जो मुझे बहुत प्रिय है भगवान का। जैसे वो रहम दिल है, वैसे वो प्यार का सागर है, उसका स्वभाव प्रेम है। उससे कोई कितनी भी नफरत करे फिर भी उसके हृदय से प्रेम ही बरसता है। दिलाराम लिखेंगे नीचे, और उसका वो कौन सा गुण है जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। हमारा हाथ एक तो लिखता रहे और चित्र बनाता रहे। क्या काम करते रहे, लिखे और चित्र बनाए। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो एक सबकॉन्शियस रिवायरिंग होता है, हमारा मन जो है उसे शब्द नहीं समझ में आते, उसे चित्रों की भाषा समझ में आती है। हमारा मन जो है उसे शब्द समझ में नहीं आते हैं, उसे कहानी की भाषा समझ में आती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को शॉक समझ में आता है, डंडा जब लगता है ना तब उसको, इसलिए डंडा रखा है इधर। एक बौद्ध आश्रम में एक बौद्ध भिक्षुनी होती है, उसे भ्रम हो जाता है कि मेरा सिर ही नहीं है। वो चिल्लाने लगती है, मेरा सिर कहाँ गया, मेरा सिर कहाँ गया, मेरा सिर कहाँ गया। लोग समझाते हैं बाकी भिक्षु कि ये क्या रहा तुम्हारा, बोलते नहीं मेरा सिर ही नहीं है, मेरा सिर किधर है, मेरा सिर किधर है, वेयर इज माई हेड, वेयर इज माई हेड, चिल्लाती है, रोती है, मेरा सिर चला गया, मेरा सिर चला गया। उसे कितना समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो सुनने को तैयार नहीं है कि मेरा सिर है। उसका उसका गुरु होता है बोकाजो, उसके पास ये खबर आती है, वो कहता है उसको इधर ले आओ। वो कहती है क्या प्रॉब्लम, बोलता मेरा सिर नहीं है, मेरा सिर नहीं है। बोकाजो एक डंडा लेता है और जोर से मारता है उसको, बोलता ये रहा तब होश ठिकाने में आए इधर इधर तो कई बार जीवन में क्या चाहिए, शौक। जब तक शौक नहीं लगता तब तक व्यक्ति बदलता नहीं है। एक व्यक्ति सुबह सुबह अखबार खोलता है और लिखा होता है उसका खुद का नाम कि उसकी मौत हो गई, एक्चुअली उसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति होता है, उसकी डेथ हो जाती है। वो पढ़ता है अल्फ्रेड डायनामाइट का व्यापारी की मौत, मौत के सौदागर की मौत। अखबार में न्यूज क्या आती है, मौत का जो सौदागर है, डायनामाइट का जो सौदागर है, उसकी मौत हो गई। एक्चुअली ये व्यक्ति वो होता है जिसने डायनामाइट की आविष्कार की थी, डायनामाइट का आविष्कार इसने किया था। और वो जब खबर पढ़ता है बोलता है बाप रे, फिर वो फोन करता है न्यूज़पेपर वाले को कि ये तुमने क्या कर दिया है, तो मैं होते ठीक है हम लोग चेंज कर रहे। पर उसके मन में विचार चलते हैं, अगर मैं वास्तव में मर जाऊं तो ऐसी खबर न्यूज़पेपर में छपेगी, मौत के सौदागर की मौत। उसने डायनामाइट खोजा था, फिर वो कहता है ऐसा नहीं चलेगा, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, इतना बड़ा शौक कि लोग मुझे ऐसा याद करेंगे मेरे मरने के बाद। वो अपनी सारी संपत्ति जमा करता है एक जगह और ट्रस्ट को दे देता है। वो कहता है आज के बाद इस संसार में जो अच्छे काम करेंगे, महान काम करेंगे, उसको मेरे नाम पर प्राइज मिलना चाहिए। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल।
जिसने डायनामाइट का खोज की थी, इसलिए तब से नोबल प्राइज, ताकि मेरा नाम लोग ऐसा याद करे, वो वैसा नहीं याद करे। मौत का सौदागर मर गया, इसलिए नोबल प्राइज हर साल दिया जाता है तब से। और वो जो संपत्ति थी उसकी, उसी पैसों का इनाम, अभी कितना है उसकी कीमत, 5 करोड़ 4 करोड़ उतना दिया जाता है, अभी बढ़ते गया है, वो अभी भी उसी फंड से चालू है। तो ये क्या मिला उसको न्यूज़पेपर में, चौक भला उस पत्रकार का। शौक शौक। तो कई बार क्या चाहिए जीवन में, शौक। आराम से चल रहे हैं, मस्त उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई पैसों की कमी नहीं है, लोग सम्मान करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, ऐसे में कोई क्रांति नहीं आती है। क्रांति के लिए क्या चाहिए, शौक, असुविधा, लिव डेंजरसली। फ्रेडरिच निट्शे जर्मन फिलोसोफर ने कहा है, जीवन कैसा हो, खतरा। 8.5 करोड़ नोबेल प्राइज। तो कई बार जो हमें लगता है किसी के द्वारा गलती हो गई है, उस गलती में भी कल्याण होता है। इसलिए जीवन में जो आ रहा है उसको क्या करना है, प्रेम से स्वीकार करना है। शौक आ रहा है उसको भी स्वीकार करो कि शायद इसमें जरूर कोई कल्याण है। एक व्यक्ति लेखक होता है, उसको लगता है नॉन फिक्शन कुछ लिखूं, अभी तक उपन्यास लिख रहा था, लोग कहते अरे तुम इतने फेमस हो मत लिखो ये सब, ये नहीं बिकता नहीं है ये ज्यादा। वो कहता नहीं मुझे लिखना है, चेंजिंग योर लाइफ इन 30 डेज नाम की किताब लिखता है, चेंजिंग योर लाइफ इन 30 डेज नाम की किताब लिखता है और पब्लिशर को देता है, देखता है लाखों कॉपियां बिक रही है, लाखों कॉपियां, 15 दिन में 30 मिलियन कॉपीज सोल्ड। परंतु उसको थोड़ा सा डाउट लगता है, मैंने इतना अच्छा लिखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। वो मंगाता है एक कॉपी और पढ़ता है, एक्चुअली प्रिंटर ने एक मिस्टेक कर दी थी, चेंजिंग योर वाइफ कर दिया था उसने। चेंजिंग योर वाइफ इन 30 डेज। तो वो पब्लिशर को फोन करके कहता है ये तुमने क्या कर दिया, ठीक करो, मेरी किताब ये नहीं है, अंदर इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। वो कहते ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, और फिर वो लाइव करता है, उसके बाद में 0 कॉपी सोल्ड। कौन पढ़ता है ये सब। लोगों को क्या चाहिए, सेंसेशन। ओनली फॉर मेन नाम की किताबें कौन पढ़ता है, फीमेल्स। ओनली फॉर फीमेल्स नाम की किताबें कौन पढ़ता है, मेल्स। ये है विडंबना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, संतुष्ट पाना था सो पा लिया। इस मुरली का मुख्य संदेश क्या है, सदा संतुष्ट मनी बनकर अपनी सर्व प्राप्तियां, कि नशे में रहो और अनुभव कराओ कि परमात्मा से सब कुछ प्राप्त हो चुका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कितनी अच्छी अवस्था है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। पर फिर भी प्रयत्नशील है आगे बढ़ने के लिए, स्वयं को, स्वयं की उन्नति के लिए। तो ये छोटी सी मुरली थी, इसलिए यहीं पूरा करते हैं। आज क्या क्या देखा हमने, रिवाइज करें। सबसे पहले क्या देखा, भाग्य की तुलना किससे की जा सकती है, किस किस से की जा सकती है, आज का होमवर्क नंबर 1। और जब भी होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क कहाँ बैठकर करना है, पेड़ के नीचे, प्रकृति के सानिध्य में जाना, एकांत में जाओ, पहाड़ों पर जाओ, इतनी प्रकृति कितनी सुंदर है चारों तरफ, छत के ऊपर जाओ, पहाड़ों के ऊपर जाओ, नकी का एक राउंड लगाओ, सोचो। एकांत में जाना, पर दो लोग मिलकर नहीं जाना, दो गए तो बातें चालू, अगर दो जाते भी है तो बात नहीं करनी आपस में, चुप। चिंतन मौन में होता है और एकांत में होता है। तो सबसे पहला काम क्या बताया, 21 बातें। इसकी 21 बातें, भाग्य की तुलना किससे की गई है, भाग्य की परछाई। तो आपके जो पॉइंट्स है इसमें ये पॉइंट नहीं आएगा। और क्या सुनाया? सेकंड पॉइंट, मेडल। तो एक क्या बनाया? एक मेडल। क्या? निरंतर ये रिपीट करते रहो, मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं, तो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप भाग्य को आकर्षित करेगा। ये संकल्प ही दूसरे संकल्पों को आकर्षित करेगा। अपने आप जीवन में ऐसी घटनाएं घटेगी कि जिससे भाग्य का सूर्य उदय होगा। अपने आप, हम कुछ नहीं कर रहे, लोग ही ऐसे मिलेंगे, महान लोगों से मिलन होगा। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर जीवन में संतों का मिलना हो रहा है तो क्या समझना है? कि भगवान की कृपा हो गई है। कैसे माने? व्हाट इज द प्रूफ? अगर श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन हो रहा है, ऐसी आत्माओं से कि जो कैसे है, वो दिव्य है, पवित्र है। सला कल्प तरुण चे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव बोलती जे अरणव पीयूषा चे। संत ज्ञानेश्वर अपने ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि ऐसे लोग कौन है? कल्प तरुण चे आरव, वो एक कल्प तरु नहीं है, पूरा फॉरेस्ट है कल्प तरु का। एक कल्प तरु यदि किसी को मिल जाए तो क्या हो जाता है? जो संत आत्मा है, जो योगी आत्मा है, जो तपस्वी आत्मा है, जो अखंड ब्रह्मचारी है, वो कौन है? कल्प तरु से आरव चेतना चिंता मणिन से गाव। वो चिंतामणि एक नहीं है, गाव के गाव बसा है उसके अंदर। बोलती जे अर्णव, वो जो बोलता है वो क्या है? अमृत। पीयूष, पीयूष आचे, वो पीयूष है। तो ऐसे वो बन जाते हैं। और क्या देखा? तो एक मेडल बनाया, वो खुद ही मेडल बना के खुद ही पहन लेना। मैं भाग्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं, अपने आप भाग्य द्वार पर आएगा। दूसरी पॉइंट। तीसरा क्या देखा? तीन तल देखे। मनुष्य तीन तलों पर जीता, एक विचार के तलों पर, एक भाव के तलों पर, एक चेतना के तलों पर। तीनों ही तल आवश्यक है, पर चेतना को विकसित करना है। तीसरी पॉइंट। चौथा क्या देखा? एक दिल का चित्र बनाया कि भगवान की ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पसंद है, दिलाराम की, वो कौन सा, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव में ऐसा क्या है जो मुझे बहुत प्रिय लगता है। रामायण में दिखाया श्री राम सीता को देखते और देखते ही रहते और आके गुरु को बताते हैं अपना। ऐसी प्राइवेट बातें किसी गुरु को बताई जाती है क्या? फर्स्ट टाइम जो श्री राम और सीता का जो मिलन होता है वो देखते रहते हैं उसको, वो उनको देखती रहती है, उसको देखती रहती है। तुलसीदास ने लिखा है सरल स्वभाव छुवत छल नाही। श्री राम का स्वभाव कैसा है? सरल स्वभाव है, उसको छल नहीं छूता है। और जिसके मन में निरंतर छलकपट 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 चलते हैं, ऐसे लोग मणि भाई भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। किसको? ऐसे आपको दिख रहे हैं ऐसे। What a tangled web we weave when we first practice to deceive। कवि लिखता है अंग्रेजी, ऐसा हमने जाल बुना दूसरों को फंसाने के लिए, हम खुद ही फंस गए उसमें। तो जो दूसरों के लिए जाल बुनेंगे वो खुद फंस जाएंगे। तो क्या देखा? भगवान को क्या पसंद है, दिलाराम। अगली पॉइंट क्या देखी? ज्ञान का यज्ञ रचना है जीवन में, और ज्ञान की जो आठों बातें, ज्ञान सुनना, ज्ञान पढ़ना, ज्ञान सोचना, ज्ञान को बोलना, ज्ञान को लिखना, मनन करना, चिंतन करना, सब कुछ समझना, उसे समझना, अपने आप को छोटा सा बच्चा समझना कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अब मैं समझने की कोशिश करूं। नाउ आई बिगिन, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं। अगला, वाई फॉर लाइफ चेंजिंग योर, चलो इसको ही होमवर्क ले लो, अपनी लाइफ को 30 दिनों में कैसे बदले, दूसरा मत करना उल्टा, उसमें 30 साल भी कम पड़ जाएंगे। अगला, उसका सिर गायब हो गया तो क्या मिला? डंडा। जब शौक, और जीवन में अचानक अगर शौक मिल गया है तो बहुत अच्छा, गुरु कृपा ही समझ लेना। अगर शौक मिलता है तो, अचानक जब शौक मिलता है, अचानक निंदा हो जाए, अचानक आरोप लग जाए, अचानक अचानक लोग जो अब तक मित्र थे दुश्मन बन जाए, समझना कुछ तो अच्छा होने वाला है जीवन में। क्या समझना है? अचानक हो गया, अब तक तो इतनी तारीफ करते थे, तुम ये हो, तुम योगी हो, तुम तपस्वी हो, अभी कहते ढोंगी, बंद करो ये नाटक। तो समझना भाग्य का कुछ तो सितारा चमकने वाला है। अगला क्या देखा? और क्या देखा? पाना था सो पा लिया। और क्या देखा अभी क्लास में वो बता दो। इच्छा, वो शिव, शिव जी ने क्या कहा भक्त को? तीन नहीं मांगो, एक ही वरदान काफी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सततम संतुष्टम सततम योगी। अगला, सबसे बड़ा खजाना संतुष्टता का खजाना। अगला, वो हो गया डंडे में सर फूट गया। अगला बताओ, वो हो गया। दूसरा बताओ। हाँ हाँ, ज्ञान की साधना हो गया। डायनामाइट, हाँ। मौत का सौदागर, द मर्चेंट ऑफ डेथ, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, ऐसी खबर अमेरिकन टाइम्स में पब्लिश होती है। अगला, कविता कौन सी? दो कविता थी, एक ऑज़िमेंडियास, वो पर्सिपेसी शैली। क्या कहता है? उस राजा के बारे में जिसकी केवल आधा पैर कुछ भी नहीं रहा है, उसको कितना अहंकार था, इतना अभिमान था, मैं ये हूं, मैं या हूं, मैं त्या हूं, मैं लिंबू हूं, मैं टिंबू हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, क्या करता हूं, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अगला, हाँ डे, हाँ, राइटिंग की साधना करनी है। राइटिंग इज मेडिटेशन। क्या करना है? राइटिंग की साधना। एक एक अक्षर प्रॉपर हो, जो बहुत, एक टेररिस्ट की हैंडराइटिंग एनालिसिस, उसको कहते हैं ग्राफेलॉजी। जो टेररिस्ट था उसका ई कैसा था पता है? ऐसा। हमारे एक मित्र है, वो हैंडराइटिंग एनालिसिस ऐसा ऐसा ई बनाता था। ओ छोड़ो। इसमें जैसे घृणा है, जैसे नफरत, जैसे इनकी हैंडराइटिंग में एक शब्द और दूसरे शब्दों में बहुत अंतर होता है, एक शब्द और दूसरे शब्दों में बहुत ज्यादा अंतर छोड़ते हैं, उनके जीवन में बड़ा अकेलापन होता है। इसके लिए अगर इसको बदल दो तो जीवन भी बदल सकता है, इसका ये उपयोग है। जो टी होता है, टी जो होता है उसका जो स्ट्रोक है, जितना शार्प और अच्छा होगा, वो जीवन का कॉन्फिडेंस दर्शाता है। और थोड़ा सा ऊपर हो, ऊपर, यहाँ बीच में नहीं, 50% में नहीं, 80% में टी वाला स्ट्रोक हो। स्वामी विवेकानंद की हैंडराइटिंग का एनालिसिस किया, टी इज ऑलवेज अप, स्ट्रोक, ये स्ट्रोक कहाँ दिया जाता है, ये आय लिखते हैं तो आय कहाँ देते हैं व्यक्ति, इधर देता है, इधर देता है, यहाँ देता है, नजदीक देता है या देता ही नहीं, कई लोग देते ही नहीं बिल्कुल, उनके जीवन में अतृप्ति रहती है, असंतुष्टता। जे और आय दो शब्द है जहां पे आय लगता है ऊपर, कई लोग और छोड़ देते, उनका छोड़ दो। ये पढ़े लिखो लोगों का चल रहा है, और ये कोई 100% साइंस नहीं है, बट देखा गया है कि ऐसा होता है, ऐसा देखा गया, ये देखना चाहिए। यह बना रहे, ऐसा यह बनाते, दिस इज रॉन्ग। शार्प स्ट्रोक हो यह का, ये ऐसा वाला स्ट्रोक ना हो, शार्प ब वाला स्ट्रोक ये हो, क के दोनों सेम हो, बराबर हो, शिरो रेखा बराबर ऐसी हो, मात्राएं बराबर ऐसी हो, एक अक्षर दूसरे अ ऐसा है तो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, तो इस पर भी काम करना है। तो एक पेज रोज क्या करना है आशीष भाई? मुरली लिखनी है। तो ये थी आज की मुरली। अच्छा, हाँ, ओम शांति। आज हमारे बीच में अनिल भाई जी आए हैं, तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट यहाँ पर आए और अपना अनुभव सुनाए। वैसे हम जब 12th क्लास में थे और जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ वो प्रोफेसर थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो एक रीति से वो हमारे टीचर भी है। और लौकिक में हमारे भाई लगते हैं रिश्ते में, और फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, और नीचे राजयोग का शिविर था, वो शिविर उन्होंने पूरा किया, और उसके बाद कल यहाँ पहुँचे, तो कल सारे दिन भर इधर थे और आज पूरा दिन इधर है, कल वो जाने वाले हैं तो हम चाहेंगे कि इन 3 दिन नीचे और 2 दिन यहाँ जो उन्होंने अनुभव किया उसके विषय में थोड़ा सा बताएं, और हम इनको मिल रहे लगभग 25 या 26 वर्ष के बाद जब 12th में थे बस, तब उसके बाद में हम बहुत कम उधर गए हैं, इतने सालों में एक ही बार घर गए थे 6 घंटे के लिए तो वो लोग इधर आते रहते हैं तो हमको उधर जाने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये अमरावती से आए हैं और हमको याद है जब पूरा तो याद नहीं, परंतु जब हम 12th में थे और भाई जी बहुत बहुत फेमस थे उस समय, अपने उनका जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे जो इनके स्टूडेंट थे वो हमेशा कहते थे कि ऐसा टीचर हमको कहीं नहीं मिला, इनकी वजह से हमने ये टॉपिक ये सब्जेक्ट पर मास्टरी मिलाई। मतलब ही वॉज वेरी वेरी फेमस, उस पूरे शिवाजी साइंस कॉलेज था उसमें बहुत बहुत प्रसिद्ध थे। और जैसे अभी कहा हमने ज्ञान एक साधना है तो वो भी एक साधना ही है, तो हम भी इनको कल इतने सालों बाद मिले, नहीं ये दे देते, भाभी जी भी आए हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी स्टेज पर आ जाए 2 मिनट के लिए।
शांति, आज बहुत प्रसन्नता है, जो इच्छा थी बहुत सालों से वो आज पूरी हुई। सचिन भाई से मिलने का अवसर मिला और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, 40 साल मेरी सर्विस हुई, 11-12 क्लास के स्टूडेंट पढ़ाए, बाद में MSc PhD तक, और मैं सबसे बहुत समाधानी हूँ और आई फील प्राउड सचिन भाई जैसे स्टूडेंट अभी भी याद में है ऐसे मेरे। मैंने 1980 से 2019 तक जो बच्चे पढ़ाए इलेक्ट्रॉनिक्स के तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज हाई प्रोफाइल्स है, पूरे जग में है, और उनका कंटिन्यूटी मेरी है उसका मेरे को बहुत समाधान है। जब भी उनका कभी बात निकलती है, सचिन भाई की बात निकलती है, और ऐसे लोग हैं, एनवायरनमेंट में काम किया मैंने 40 साल, तो मैं प्राकृतिक का बहुत जानता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन भी था, लेकिन प्राकृतिक में जो मैंने पूरा 40 साल बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सबको लेके जंगल में घूमना, और उनसे जो सीखा हूँ तो वो मुझे एक याद दिलाता है कि जैसे बोले नॉलेज कन्वर्ट इनटू मनी एक चीज है, और दूसरा समाधान प्राकृतिक ही सब अपने को सिखाती है, और उसका मेरे को बहुत बड़ा अनुभव अनुमति है, अनुभव मिला है, और मैं बहुत समाधानी हूँ। मैं आज भी कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, कहीं मुझे कोई टारगेट नहीं, और हर फेज में अपने लाइफ का आनंद लेता हूँ। आज सचिन भाई से मिलके बहुत आनंद हुआ, और उनका बचपना, उनकी जन्म से तो अभी तक की सभी याद मुझे है, आई फील प्राउड, बहुत अच्छा लगता है अपने अपने फैमिली मेंबर, अपने विद्यार्थियों, ही इज माई स्टूडेंट, ही वॉज माई स्टूडेंट 11-12, तो जो प्रगति है बच्चों की देख के उसमें बहुत समाधान है। एक ही बात कहना चाहता हूँ आखिरी में, या जन्मावर या जगनावर शतदा प्रेम करा। आणि मगाशी जो प्रश्न मी जे ऐकलं नॉलेज ज्ञान, नॉलेज ज्ञान पैसा, और ये दोनों चीजें के लिए जो भी प्राप्त करते हैं वो देना चाहिए, और उसका ज्ञानार्जन होना चाहिए, और पैसा ये सोशल एक्टिविटी और इसके लिए काम, यही कहते हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। हम पहली बार यहाँ है, सचिन भाई जी से बहुत सालों के बाद 25-30 सालों के बाद मिले, और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। एक सुकून मिला, शांति मिली, बस इतना ही।
और सबसे आनंद इनके माता जी, हमारी मौसी जी है, उनका ये था कि यहाँ जाने के बाद सचिन से बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, और मैंने बोला उसी के लिए जा रहा हूँ, अदरवाइज और आज वो मेरी इच्छा पूरी हुई।
जो शिविर आपने किया और यहाँ जो घूमे, यहाँ का क्या अनुभव?
बहुत अच्छा। फर्स्ट तो एक शांति, मन की शांति, एकाग्रता, और सब अपने दिल में जो आज के जो 40 साल का जो तजुर्बा है, 60, अब मैं 68 ईयर का हूँ, 68 साल में जो भी है वो सब बाहर गया, सब छोड़ दिया, और एक यूनिडायरेक्शनल, एक फोकस करके कंसंट्रेशन, और अपने आगे के जीवन का शांतमय, समाधानी, ये दो चीज पे मैं ख्याल किया। बाबा के बारे में मैं अभी जो तीनों दिन के जो ट्रेनिंग में सुना, वो जो लक्ष्य था, वो जो उनकी प्राप्ति थी, तो उन्होंने जो अभी आपको अपने को दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण लगता है। उस राह से अपन ने अपना सोशल वर्क बोलो या अपनी आगे की दिशा है, कुछ तो भी अपन ने लोगों को देना चाहिए अपने तरफ से। लोगों से जैसे अपन ज्ञान लेते हैं तो अपन ने भी, तो ऐसा मुझे लगता है। और पॉजिटिव थिंकिंग इज नो निगेटिव थिंकिंग, ये मुझे लगा है। ये पूरे 3 दिन के इसमें एक तो परमात्मा, आत्मा, ये जो चीज है, ये मैं बहुत गहराई से उसके ऊपर सोचता है। और अभी ये मेरी अभी जरिए ये आगे के बाबा के डायरेक्शन की सबसे मैं सोच, ये मेरे धन्यवाद। ओम शांति।
चिंतन कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन, मन की आँखें खोल कर मनन, चेतना के द्वार खोल कर गमन। चिंतन 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 कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन, स्वस्वरूप का चिंतन कर, स्वमान का चिंतन कर, स्वयं का अभिनंदन, स्वगुणों का चिंतन कर, स्वयं में संवर्धन, स्वशक्तियों का चिंतन कर, जीवन में धारण, स्वधर्म का चिंतन कर, पल पल स्मरण, स्वलक्ष्य का चिंतन कर, स्वयं को समर्पण। चिंतन 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 कर चिंतन, स्वपरिवर्तन का चिंतन, तोड़ पुरानी बंधन, स्वाधिकार का चिंतन, देख स्वयं का प्रशासन, स्वप्राप्ति का चिंतन कर, उनका रक्षण, स्वज्ञान का चिंतन, बना अपना योगिनी जीवन। चिंतन 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 कर चिंतन, चिंतन भस्म कर माया के व्यसन चिंतन 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 कर चिंतन मंथन 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 कर मंथन स्वउन्नति का चिंतन कर संपूर्णता का आह्वान स्वस्थिति का चिंतन कर स्वयं का स्वयं निर्धारण स्वसंस्कारों का चिंतन निज में हो देवता का आकर्षण स्वदर्शन चक्र का चिंतन पावन हो सृष्टि का कण कण स्व अलंकार का चिंतन हर दिन हो नूतन चयन स्वविशेषताओं का चिंतन हो चिंतन मंगलम शिव बाबा का स्मरण।